नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही 32 देशों के साथ बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने वाल्मीकि नगर में विधानसभा चुनाव के लिए SSB के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे में औरंगाबाद के नबीनगर में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले पावर प्लांट इकाई का भी शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मधेपुरा में वज्रपात की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही 32 देशों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने इस संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों और प्रतिनिधिमंडलों की सूची साझा की है।
भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में पहला समूह सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया का दौरा करेगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दूसरा समूह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरा समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चौथा समूह संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन का दौरा करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पांचवा प्रतिनिधि मंडल अमरीका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में छठा प्रतिनिधि मंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में 7वां समूह मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सर फिरोजी।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने के निर्णय का स्वागत किया है। श्री मांझी ने कहा कि सभी देशों को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी और पक्की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री ने यह सही उपाय सोचा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह देश हित में लिया गया फैसला है।
भारत का पक्ष पूरे दुनिया के अंदर प्रमुख देशों के बीच ये संसदीय दल रखेगी और सबसे खूबसूरती जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी दल के सांसद, प्रमुख सांसद इसमें जा रहे हैं और ये बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ नहीं। इंसानियत और मानवता के लिए निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए भारत ने अभी युद्ध विराम भी किया है। इससे बड़ा भारत का दिल क्या हो सकता है। लेकिन आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस भारत की नीति है और पूरे दुनिया के प्रमुख देशों से भारत इसके लिए सहयोग चाहेगी।
आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलामी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बेगूसराय के हर हर महादेव चौक से शहीद स्मारक तक एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इधर शेखपुरा जिला भाजपा अध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में जिले में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकालकर सैनिकों के अदम्य साहस को सलामी दी गई। पटना में भी राजेंद्र नगर में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने अपने बिहार दौरे के तीसरे दिन आज पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में सशस्त्र सीमा बल SSB के अधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सुरक्षा बैठक की। इस दौरान चुनाव के दौरान सीमा पर सुरक्षा प्रबंध को लेकर विचार विमर्श किया गया। श्री जोशी कल वैशाली जिले का फील्ड विजिट करेंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयुक्त श्री जोशी का 4 दिवसीय बिहार दौरा कल समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को राज्य के 2 दिवसीय दौरे के दौरान औरंगाबाद के नबीनगर में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले पावर प्लांट इकाई का भी शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण पर लगभग 29,948 करोड़ की लागत आएगी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 29 मई को श्री मोदी पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसा पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने दल आसा का भी जन सुराज में विलय कर दिया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह का स्वागत किया।
आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में सामाजिक समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं, तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी।
वहीं आरसीपी सिंह ने कहा कि जन सुराज जन आकांक्षाओं की पार्टी है।
जन सुराज से बिहार की जनता को बहुत आशा है। और आशा किस बात की? बिहार हमारा कब विकसित प्रदेश बनेगा, बिहार कब हमारा जो हमारे यहाँ के जितने युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, बिहार जिस प्रकार से पहले भी समझिए ज्ञान का केंद्र रहा वो कब होगा। तो जब हम लोग मिले हैं ना, तो हम सब लोगों का लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, बड़ा सोचते हैं और बिहार का बहुत अद्भुत इतिहास रहा है।
राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों पहले जदयू में थे। उन्होंने कहा कि यह सब किसके इशारे पर हो रहा है ये सभी जानते हैं।
दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही है किसके इशारे पे हो रहा है। हालांकि इस पे हमको क्या टिप्पणी ज्यादा करना है, सब लोग अपना लोग लगे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बहुत मजबूत है। उन्होंने आरसीपी सिंह के जन सुराज में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री हुसैन ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा।
बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, कोई किसी को ज्वाइन करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरसीपी सिंह ने पीके को ज्वाइन किया है, ऐसे भी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब उपचुनाव भी हुआ था तब हम लोगों ने बता दिया था कि चारों सीट पर एनडीए जीता था और इस बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से ज्यादा सीट हम लोग जीतने वाले हैं और 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं।
जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नालंदा जिला प्रशासन पर उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा जाने से रोकने का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जन सुराज नेता को कार्यक्रम के लिए बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान आवंटित किया गया था, लेकिन वे इसका उल्लंघन कर अन्य स्थानों पर सभा और अभियान करने का प्रयास करने लगे, इसलिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए कार्रवाई करनी पड़ी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के कई स्थानों पर आज गरज के साथ बारिश हुई है। दरभंगा, अररिया, मधेपुरा, पटना सहित अन्य कई हिस्सों में बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर मधेपुरा जिले में सिंहेश्वर और शंकरपुर प्रखंड में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया में मूसलाधार बारिश के चलते कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर मौसम विभाग पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर टाडा इलाके में अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से दिन दहाड़े 35 लाख रुपए मूल्य के जेवर लूट लिए। लुटेरों ने विरोध करने पर आभूषणालय के मालिक फूल बाबू साह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी अंचल कार्यालय में अनियमितता की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री सरावगी ने कहा कि अंचल कार्यालय में दलालों की मौजूदगी को लेकर आम लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। दरभंगा जिला के सिमरी थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अनिल कुमार तिवारी को एक शराब कारोबारी से रिश्वत लेकर उसे छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ जलारेड्डी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबित पुलिस कर्मी के विरुद्ध कमतौल के पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई जांच में 6,000 रूपए घूस लेने का आरोप सही पाया गया है। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक समृद्धि, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। दुनिया के सबसे उन्नत संग्रहालयों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले बिहार संग्रहालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह का संग्रहालय के विकास में प्रमुख योगदान है। वो बिहार संग्रहालय के महानिदेशक हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि संस्थान ने पटना और आसपास के क्षेत्रों में संग्रहालयों का एक नेटवर्क विकसित किया है।
बिहार संग्रहालय का जो निर्माण हुआ वो हमारी जो कला धरोहर और संस्कृति थी उसकी पूरी झलक दिखाने के लिए बिहार के लोगों को, देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को इसका निर्माण किया गया। ये सारा संग्रह जो था पटना संग्रहालय में था, तो उसी संग्रहालय में जो चीजें थी उसी को विकसित करके दो संग्रहालय बनाए गए, बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय। इसके अलावा भी आप देखिएगा, पटना शहर अब एक संग्रहालयों का शहर बन गया है। यहाँ बापू टावर, महात्मा गांधी जी पर, बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध पर, साइंस म्यूजियम, और फिर वैशाली में वैशाली बुद्ध, भगवान बुद्ध पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। तो सरकार का मानना यह है कि हम अपनी कला, संस्कृति, इतिहास और धरोहर से आने वाली पीढ़ी को इन संग्रहालयों के माध्यम से बताएंगे और लोग अपना गौरव अनुभव करेंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा अतीत कैसा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को संग्रहालयों से जोड़ने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं।
हम लोगों का मानना है कि संग्रहालय केवल एक संग्रहालय, एक भवन और एक कलाकृतियों का संग्रह बन के नहीं रह जाए, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ रहे। इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और हम लोग हर तरह का कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो संगीत का हो, परफॉर्मिंग आर्ट का हो, फिल्म का हो, एग्जीबिशन हो। लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में आते रहे और हमसे जुड़ते रहे। हम लोग ज्यादा ख्याल बच्चों का रखते हैं क्योंकि बिहार की आबादी बहुत युवा आबादी है, तो हमारे संग्रहालय में भी उसके लिए विशेष स्थान है, उनके लिए भी हम बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं। इससे होता क्या है कि संग्रहालय समाज से जुड़ा रहता है और नई नई गतिविधियां करता रहता है, लोग नई चीजें सीखते हैं।
पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 9 कर्मचारियों को शराब पार्टी करते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बगहा के एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि मदनपुर वन क्षेत्र के फॉरेस्टर के आवास पर छापेमारी के दौरान शराब की कई बोतलें भी बरामद की गईं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेली जा रही श्यामल सिन्हा अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में रोचक मुकाबले देखने को मिले हैं। जमुई के झाझा में खेले गए एक दिवसीय मैचों में बांका, पश्चिम चंपारण और नवादा ने विरोधी टीमों को पराजित कर अपने अपने मैच जीत लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही 32 देशों के साथ बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने वाल्मीकि नगर में विधानसभा चुनाव के लिए एसएसबी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे में औरंगाबाद के नवीनगर में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले पावर प्लांट इकाई का भी शिलान्यास करेंगे। और प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मधेपुरा में वज्रपात की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।